नागरिकता और मानव अधिकार, नागरिक अधिकार और मानव अधिकार। नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी राज्य के नागरिक को केवल नागरिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं और जिन्हें कानून के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। लोकतंत्रीय राज्य में सब नागरिकों को समान कानूनी हैसियत स्वीकार की जाती है, अतः उनके नागरिक अधिकार निर्धारित करते समय उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। दूसरे शब्दों में नागरिक अधिकारों का सिद्धांत जाति, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर बहुमत और अल्पमत के समान अधिकारों की सुरक्षा की मांग करता है। नागरिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता, दैहिक स्वतंत्रता, वाणी, विचार और आस्था की स्वतंत्रता, संघ बनाने और सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त विचरण करने की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुबंध की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य नागरिकों के साथ मिलजुल कर सार्वजनिक संपत्ति, सेवाओं और सुविधाओं का प्रयोग करना भी प्रत्येक नागरिक का अधिकार माना जाता है। जब किसी समाज में किन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों को समान नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो वे उसे भेदभाव के विरुद्ध नागरिक अधिकार आंदोलन चला सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जब अश्वेत नागरिकों को लंबे समय तक समान नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया तो उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाकर 1964 में ये अधिकार प्राप्त कर लिए। दूसरी ओर मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य के नाते प्राप्त होने चाहिए, चाहे इसके लिए उपयुक्त कानून व्यवस्था की गई हो या ना की गई हो। इससे जाहिर है कि मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र नागरिक अधिकारों की तुलना में अत्यंत विस्तृत है। देखा जाए तो सभ्य मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि या अंतरात्मा की प्रेरणा से मनुष्य मात्र की विशेष गरिमा को मान्यता देते हैं और यही विचार मानव अधिकारों की अवधारणा का मूल स्रोत है। हमारी नैतिक चेतना और सामाजिक चेतना जितनी विकसित होती जाएगी, मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता जाएगा। परंतु उनमें से कुछ ही अधिकार विश्व के केवल हिस्सों में कानून के द्वारा सुरक्षित किए जा सकेंगे। केवल उन्हीं अधिकारों को नागरिक अधिकारों के रूप में मान्यता मिलेगी जिस समाज में जितने ज़्यादा मानव अधिकारों को नागरिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया जाएगा, वह समाज नैतिक दृष्टि से उतना ही उन्नत माना जाएगा। नागरिक अधिकारों का स्रोत नागरिकता का विचार है, परंतु मानव अधिकारों का विचार नागरिकता की सीमाओं से नहीं बंधा है। हो सकता है किसी राज्य में किसी अपराधी या विक्षिप्त व्यक्ति को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, परंतु फिर भी उसे उपयुक्त मानव अधिकारों का पात्र माना जाएगा। इसी तरह किसी राज्य में विदेशी जनशत्रु देश के नागरिक या युद्धबंदी को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, परंतु उन्हें भी मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिक अधिकारों के स्वरूप की विस्तृत जानकारी के लिए नागरिकता की संकल्पना का विस्तृत विवेचन जरूरी हो जाता है। नागरिकता की संकल्पना। नागरिकता का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और उसे राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। नागरिकता का विचार बहुत पुराना है, परंतु आधुनिक युग में यह राष्ट्र राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की हैसियत का संकेत मात्र प्रस्तुत संदर्भ में औपचारिक नागरिकता और तात्विक नागरिकता में अंतर करना उपयुक्त होगा। औपचारिक नागरिकता के लिए राष्ट्र की राज्य की सदस्यता पर्याप्त मानी जाती है। दूसरी ओर किसी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत अपने पूर्ण सदस्यों को जो नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं वे तात्विक नागरिकता की परिभाषा में आते हैं। किसी राज्य में व्यक्ति को नागरिकता किन किन शर्तों पर प्राप्त होगी यह उस राज्य के संविधान और कानून से निर्धारित होता है। कोई भी राष्ट्र राज्य अन्य देशों के अप्रवासियों को अपनी नागरिकता आसानी से प्रदान नहीं करता। साधारणतः जब कोई व्यक्ति एक राष्ट्र राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे अपने मूल देश की नागरिकता का त्याग करना होता है। हालांकि कुछ देश अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता का लाभ देते हुए भी ऐसी मांग नहीं करते, फिर भी यह संभव है कि किसी राज्य के नागरिक या उनके कुछ समूह वहां प्रचलित अधिकारों से संतुष्ट ना हों, अतः वे नागरिक अधिकारों की मांग उठाकर उनके विस्तार के लिए सामाजिक आंदोलन का सहारा ले सकते हैं। देखा जाए तो नागरिकता की मूल संकल्पना कर्तव्य भावना के साथ जुड़ी थी और उसमें अधिकारों का विचार गौण था, परंतु आज के युग में नागरिकता की पहचान अधिकारों से की जाती है और व्यक्ति के कर्तव्य वहीं तक स्वीकार किए जाते हैं जहां तक वे इन अधिकारों को कायम रखने के लिए जरूरी है। ऐतिहासिक विकास। नागरिकता एक प्रगतिशील विचार है। प्राचीन काल में जब नागरिकता का विचार विकसित नहीं हुआ था और लोग शासक की अदम्य शक्ति के आगे विवश थे, तब शासक की स्थिति स्वामी के समान थी और प्रजा की स्थिति दास के तुल्य थी। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र में लोगों का जीवन मरण सम्राट की इच्छा पर आश्रित था। जब वह चाहता अपनी प्रजा की स्त्रियों और संपत्ति पर अधिकार कर सकता था। नागरिकता का विचार विकसित हो जाने पर ऐसी संभावना समाप्त हो गई। नागरिकता का विचार अपने आरंभिक रूप में प्राचीन यूनान और रोमन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। यह बात याद रखने की है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक समुदाय का स्वरूप आज के लोकतंत्रीय राष्ट्र राज्य के राजनीतिक समुदाय से सर्वथा भिन्न था। आज के लोकतंत्रीय राज्य के सभी स्थायी सदस्य वहां के नागरिक माने जाते हैं, परंतु प्राचीन यूनान नगर के राज्य के निवासियों में बहुत से थोड़े लोग करीब 10% स्वतंत्र जन थे जो पूर्ण नागरिक माने जाते थे। इन नागरिकों के अधिकार अवश्य समान थे, विशेषतः इनमें धनवान और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता था। शेष समुदाय में दास, स्त्रियां और अन्य देशीय आते थे जिन्हें कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः अरस्तु ने नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार माना है। यह शक्ति के प्रयोग में प्रभावशाली सहभागिता का संकेत देती थी। कुछ भी हो, प्राचीन यूनानी चिंतन में शासक वर्ग के इस विशेषाधिकार को कर्तव्य का रूप देकर इसके पालन पर बल दिया गया ताकि राजनीतिक समुदाय सब लोगों को अर्थात नागरिकों को और गैर नागरिकों को दोनों तरह के लोगों को उत्तम जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो। यूनानी नगर राज्यों के पतन के बाद रोमन साम्राज्य के युग में नागरिकता की नई परिभाषा विकसित की गई। शुरू शुरू में वहां भी नागरिकता सत्ताधारियों का विशेषाधिकार थी, परंतु बाद में सामान्य जन और युद्ध में पराजित लोगों को भी नागरिकता का दर्जा दे दिया गया। इसमें से तरह तरह के लोग नागरिकों की श्रेणी में आए। केवल निम्नतम श्रेणियों के लोगों और स्त्रियों को नागरिकता के दायरे से बाहर रखा गया। अतः अब नागरिक का अर्थ कानून का संरक्षक नहीं रहा, बल्कि यह माने जाना लगा कि नागरिक को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। मध्ययुगीन यूरोप में राजनीतिक सत्ता पर धार्मिक सत्ता का वर्चस्व स्थापित था। तब सांसारिक नागरिकता का विचार विशेष चर्चा का विषय नहीं रहा। 15वीं 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आलोक में आधुनिक चिंतन का उदय हुआ, जब इतावली गणराज्यों में नागरिकता का विचार फिर से आकर्षण का केंद्र बना। विख्यात इतावली विचारक निकोलो मैकियावेली ने इस विचार को नया जीवन प्रदान किया। 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में जेम्स हैरिगटन और जॉन मिल्टन ने इसका पुनः निरूपण किया। हैरिगटन ने भविष्य के लिए ऐसी आदर्श व्यवस्था का चित्र खींचा जो कानूनों का साम्राज्य होगा, मनुष्यों का नहीं। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के समर्थकों ने नागरिकता के विचार को विशेष रूप से लोकप्रिय बना दिया। 18वीं शताब्दी में अमेरिकी क्रांति के दिनों में यह विचार अमेरिका में बहुत लोकप्रिय रहा। नागरिकता का विश्व जननी आदर्श क्रांति तथा मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा के साथ पूरे उत्कर्ष पर पहुंचा। इस घोषणा के अंतर्गत जे जे रूसो के विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। रूसो ने अपनी चर्चित कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लिखा था कि नागरिक एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति है। वह उन सब निर्णयों में भाग लेने का हकदार है जो सब नागरिकों के लिए बाध्यकर होते हैं। यूरोप में वाणिज्य साम्राज्य के उदय के देखकर रूसों ने यह स्पष्ट अनुभव किया था कि इस समाज में सामान्य हित और निजी हितों में तनाव पैदा होना स्वाभाविक है और यह तनाव समाज की एकता को छिन्न भिन्न कर देगा। रूसों ने सोच समझकर सामान्य हित के विचार को निजी हितों की मांग से ऊपर रखा। 19वीं शताब्दी में उदारवाद के उत्कर्ष के साथ बाजार संबंधों का विकास हुआ जिसने नागरिकता की नई धारणा को बढ़ावा दिया। अब प्राकृतिक अधिकारों के विचार को नागरिकता का आधार माना जाने लगा। प्राकृतिक अधिकारों का विचार मूलतः 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया था। लॉक ने तर्क दिया था कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का मुख्य आधार है। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक अपने राज्य का निर्माण करते हैं। यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार मिल जाता है। इन विचारों की प्रेरणा से 19वीं शताब्दी में नागरिकता को केवल कानूनी हैसियत का सूचक माना जाने लगा और व्यक्ति के अधिकारों की परिभाषा राज्य के विरुद्ध अधिकारों के रूप में दी जाने लगी। और आगे चलकर इसी समाज में सकारात्मक अधिकारों की धारणा विकसित हुई जिसने नागरिकता के विचार को अपने तर्कसंगत परिणाम तक पहुंचाया। संक्षेप में राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकारों की कोटि में रखा जाता है और दूसरी ओर व्यक्ति को आत्मविश्वास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से जो विशेष व्यवस्था की जाती है वह व्यक्ति के सकारात्मक अधिकारों को व्यक्त करती है। नागरिकता के विविध पक्ष, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। आज के युग में तात्विक नागरिकता के तीन महत्वपूर्ण पक्ष स्वीकार किए जाते हैं। इन्हें कर्मठ नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की कोटि में रखा जाता है। टीएच मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, नागरिकता और सामाजिक वर्ग के अंतर्गत यह दिखाया कि ब्रिटेन में किस तरह धीरे धीरे इन अधिकारों का विकास हुआ जिससे नागरिकता की संकल्पना अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंची। यह बात याद रखने की है कि वहां 17वीं शताब्दी के अंत में गौरवमय क्रांति के साथ नागरिकता की संकल्पना की शुरुआत हुई। मार्शल ने यह दिखाया है कि 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता या नागरिकता का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में आधुनिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता या राजनीतिक नागरिकता स्थापित हुई। अतः 20वीं शताब्दी में वहां राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप सामाजिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता या सामाजिक नागरिकता का विकास हुआ। मार्सन ने लिखा है कि वहां के न्यायालय नागरिकों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करते थे, प्रतिनिधि राजनीतिक संस्थाएं उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और सामाजिक सेवाएं तथा स्कूल उन्हें समुचित सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं। मार्शल के अनुसार नागरिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता, दैहिक स्वतंत्रता, वाणी, विचार और आस्था की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने और अनुबंध करने के अधिकारों का विशेष स्थान है। नागरिक अधिकारों की सार्थकता के लिए यह जरूरी है कि ये अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्गों को समानता या बराबरी के आधार पर प्राप्त होने चाहिए। दूसरे शब्दों में इन अधिकारों की व्यवस्था करते समय राज्य में सजातीय, प्रजातीय, धार्मिक और भाषाई समूहों में से किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। यदि किन्हीं समूहों के साथ, विशेषतः अल्पसंख्यक वर्गों के साथ इस मामले में भेदभाव बरता जाता है तो ये समूह इस भेदभाव के विरुद्ध नागरिक अधिकार आंदोलन चला सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों आंदोलन ने उन अधिकारों को लागू करने चलाए गए आंदोलन में निहित थे, परंतु व्यवहार के स्तर पर अश्वेत लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों के मुक्त प्रयोग और रोजगार के समान अवसरों से वंचित रखा गया। उनके लगातार संघर्ष और लंबे आंदोलन का परिणाम नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के रूप में सामने आया। इस अधिनियम के अंतर्गत भेदभाव के विरुद्ध अतिरिक्त व्यवस्था की गई। यह बात ध्यान देने की है कि जो कानून पहले से मौजूद हो परंतु व्यवहार के धरातल पर प्रभावहीन हो, उसे लागू करने के लिए नया कानून बना देना पर्याप्त नहीं। अतः नागरिक अधिकार आंदोलन को न केवल यह देखना चाहिए कि कानून सर्वथा स्पष्ट हो, बल्कि उसे लागू करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां भी मौजूद हों, अर्थात संविधान या कानून के अंतर्गत जिन अधिकारों की व्यवस्था की गई हो उन्हें लागू करने के लिए न्यायालय न केवल स्वाधीन और समर्थ हो बल्कि तैयार भी हो। दूसरे शब्दों में देश के वंचित वर्गों के लिए न केवल न्यायालय के द्वार खुले हुए हों बल्कि स्वयं न्यायाधीश भी कानून की व्याख्या देते समय वंचित वर्गों के अधिकार के प्रति सजग और सहानुभूति पूर्ण हो। मार्शल के अनुसार नागरिक के राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत चुनाव में भाग लेने का अधिकार और राजनीतिक सत्ता से जुड़ी हुई संस्थाओं में कार्य करने का अधिकार सम्मिलित है, चाहे वे विधानमंडल में हो या मंत्रिमंडल में। देखा जाए तो राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था यह मांग करती है कि निश्चित प्रक्रिया के अनुसार राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का मार्ग सबके लिए खुला हो, जनसाधारण अपनी पसंद के शासक चुन सके, अनचाहे सत्ताधारियों को बदल सके, सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सके, सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्रवाइयों की आलोचना कर सके, वैकल्पिक नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। साम्यवादी देशों में राजनीतिक सत्ता पर एक ही दल, साम्यवादी दल का एकाधिकार रहा। वह चुनाव तो होते हैं परंतु उम्मीदवार मनोनीत करने का अधिकार केवल सत्तारूढ़ दल के हाथों में रहा। जनसाधारण के पास सत्ताधारियों को बदलने की ताकत नहीं रही। अतः वहाँ सही अर्थ में नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं रहे। हालांकि वे अपने शासन को जनवादी प्रणाली की संज्ञा देते रहे। चीन की राजधानी पेइचिंग में 1979 में जब तियानामेन चौक पर हजारों युवा प्रदर्शनकारियों ने प्रचलित राजनीतिक प्रणाली की जगह लोकतंत्रीय प्रणाली अपनाने की मांग की, तब उन्हें विद्रोही करार दिया गया और ढेर सारे प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया गया। मार्शल के अनुसार सामाजिक अधिकारों से तात्पर्य है निश्चित स्तर की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का अधिकार तथा सभ्यता और संस्कृति की धरोहर को दूसरों के साथ मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार। लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राय कल्याणकारी राज्य की छत्रछाया में प्रदान किए जाते हैं। यूरोप में 19वीं शताब्दी के राज्य को प्रहरी राज्य की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि उसका उद्देश्य नागरिकों की संपत्ति की रखवाली करना था। 20वीं शताब्दी के पूर्वाध में ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, जो धीरे धीरे अन्य लोकतंत्रीय देशों में भी लोकप्रिय हो गया। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को उन नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में लगाना और उनके लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करना था, जो नागरिकों के सामूहिक सामाजिक हितों की बढ़ावा देती हो। विलियम बेवरिज की प्रसिद्ध बेवरिज रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य का ध्येय 5 महाबुराइयों को अंत करना था: अभाव, रोग, अज्ञान, दरिद्रता और बेकारी। अब यह माना जाने लगा कि भविष्य में जब खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के दुष्परिणाम लोगों के बस के बाहर हो जाएंगे, विशेषतः जब लोग बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापे की वजह से लाचार हो जाएंगे, तब राज्य स्वयं अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सहायता का प्रबंध करेगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में नागरिकता के विविध पक्षों का विकास तर्कसंगत क्रम में हुआ और इस क्रम में वह अपने उत्कर्ष तक पहुंची। वहां नागरिकों ने लोकतंत्र के पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया, जिससे राजनीतिक अधिकारों की स्थापना हुई। राजनीतिक अधिकारों ने जनसाधारण को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर दिया। इससे सामाजिक अधिकारों का विकास हुआ और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता को संकल्पना नागरिक अधिकारों से आगे नहीं बढ़ पाई। अतः वहां स्त्रियों और अश्वेतों ने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष चलाया और इसमें सफलता प्राप्त की। यह बात भी ध्यान देने की है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिम यूरोप और पूर्वी यूरोप में नागरिकता की संकल्पना भिन्न भिन्न रूपों से विकसित हुई। पश्चिम यूरोप को उदार लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत शुरू शुरू में नागरिक और राजनीतिक अधिकार स्थापित किए गए और फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विषमातुलक प्रवृत्तियों के प्रतिकार के लिए कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सामाजिक अधिकार स्थापित किए गए। परंतु पूर्वी यूरोप के साम्यवादी अधिनायक तंत्रों के अंतर्गत शुरू शुरू में नागरिकों के विस्तृत सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था की गई और इसके लिए उन्हें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में भारी कटौती की गई। 1979 में इन देशी हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया और रोमानिया में बुनियादी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग उठाते हुए सत्ता विरोधी और आंदोलन चलाए गए। उनके परिणाम स्वरूप इन सब देशों में साम्यवादी प्रणालियों का चलन पतन हो गया। नागरिकता के सिद्धांत समकालीन राजनीतिक चर्चा के अंतर्गत नागरिकता के उपयुक्त आधार और विचार क्षेत्र के बारे में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 5 सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, उदारवादी सिद्धांत, स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, समुदायवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता की बुनियादी नागरिक अधिकार है। यह अधिकार समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने, अपने तर्कसंगत परिणाम तक पहुंचने में सहायक होते हैं। चूंकि यह सिद्धांत अधिकारों के विकास में विश्वास करता है, इसलिए इसे नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की मुख्य प्रवक्ता T.H. मार्शल है। मार्शल ने अपनी महत्वपूर्ण कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास के अंतर्गत लिखा है कि नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध, शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत ये व्यक्ति मिलजुल कर अपने सहचर्य की शर्तें तय करते हैं। नागरिकता का विचार समाज के वर्ग विभाजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। सामाजिक वर्ग तो संपत्ति के स्वामित्व, शिक्षा के स्तर और अर्थव्यवस्था के ढांचे के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में विषमता को बढ़ावा देता है, परंतु नागरिकता उन्हें समान हैसियत प्रदान करने को तत्पर होती है। मार्शल ने आधुनिक ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए यह दिखाया कि नागरिकता का विचार नागरिक अधिकारों की व्यवस्था से शुरू होता है, फिर यह क्रमशः राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था करके अपने पूर्ण उत्कर्ष तक पहुंचता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अधिकार बाजार व्यवस्था पर आश्रित नहीं रह जाते। अतः नागरिकता अपने पूर्ण विकसित रूप में वस्तुओं, सेवाओं, लाभों इत्यादि के पूर्ण वितरण को बढ़ावा देती है। यह स्थिति सामाजिक न्याय का लक्षण है। उदाहरण के लिए, जब लोग अपनी बाजार आय से अपने परिवार की स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा या आवास की व्यवस्था नहीं कर पाते, तब वे नागरिक के नाते राज्य की सहायता प्राप्त करने के हकदार होते हैं। क्योंकि नागरिकता किसी समुदाय के सदस्यों के उस समुदाय की सांझी विरासत में हिस्सा दिलाती है, इसलिए ये लोग उस समुदाय के प्रति निष्ठा से बंध जाते हैं। यह विचार नागरिकता के कर्तव्य पक्ष को सुदृढ़ करता है। इस सिद्धांत के आलोचक यह तर्क देते हैं कि यह जरूरत से ज्यादा आशावादी है। जब सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए सामाजिक संसाधनों का पूर्ण वितरण किया जाता है, तब समाज में कुछ लोगों पर कर लगाकर दूसरों को लाभ पहुंचाया जाता है। समाज में सद्भावना और सुदृढ़ता कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि कर देने वालों पर अनुचित बोझ ना पड़े और उनके मन को क्लेश हो। यह सचमुच कठिन कार्य है। नागरिकता का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। यह बाजार समाज के प्रतिरूप नागरिक को जीवन का उपयुक्त आधार मानता है। इस सिद्धांत की मुख्य प्रवक्ता रॉबर्ट नॉजिक है। नॉजिक ने अपनी चर्चित कृति एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, अराजकता, राज्य और कल्पना लोक के अंतर्गत यह संकेत किया है कि लोग अपने मूल्यों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं की सिद्धि के लिए निजी गतिविधि, बाजार विनिमय और स्वैच्छिक सहचर्य का सहारा लेते हैं। नागरिकता की जरूरत इसलिए पैदा होती है क्योंकि कुछ आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं इन तरीकों से उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः उनके लिए सार्वजनिक व्यवस्था जरूरी हो जाती है। इस दृष्टि से नागरिक का अर्थ है सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोगता। नॉजिक के अनुसार राज्य को एक विशाल उद्यम मानना चाहिए, नागरिक उसके ग्राहक या सेवार्थी है। मनुष्य अपनी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए संरक्षक संस्थाओं की सेवाएं प्राप्त करते हैं। राज्य ऐसी संरक्षक संस्था है जो मुक्त प्रतियोगिता में सबसे आगे रहती है, अतः उसे निर्दिष्ट भूभाग में बल प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। इस सिद्धांत के आलोचक यह तर्क देते हैं कि मुक्त बाजार पर आधारित व्यक्तिवाद सामाजिक सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त नहीं है। नागरिकता का यह प्रतिरूप समाज के भीतर स्वार्थों की भीषण लड़ाई और तीव्र वाद विवाद को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए नागरिकता की यह संकल्पना लागू कर देने पर ऐसे प्रश्न उठ खड़े होंगे कि लोग सरकारी अस्पताल से इलाज नहीं कराते या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, वे इन अस्पतालों और स्कूल का खर्चा उठाने के लिए कर क्यों दें? जिनके पास विशाल संपत्ति नहीं है वे इतने बड़े पुलिस बल को रखरखाव का खर्च उठाने में सहयोग क्यों दें? या फिर जिन्हें अपने देश में कोई लगाव नहीं, अर्थात जो लोग अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर कहीं भी जाकर ऊंची आय अर्जित कर सकते हैं, वे अपने देश को विशाल सेनाओं के रखरखाव के खर्च में अपना हिस्सा क्यों दें? इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए यह कहा जाएगा कि लोगों को अपनी आकस्मिक जरूरतों जैसे कि अग्नि कांड, बीमारी, दुर्घटना, चोरी, डकैती इत्यादि के समय सहायता के लिए निजी बीमा कंपनियों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह धीरे धीरे सरकार की जरूरत ही खत्म हो जाएगी और नागरिकता का विचार निरर्थक हो जाएगा। नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत। स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत के विपरीत नागरिकता का समुदायवादी या गणतंत्रवादी सिद्धांत व्यक्ति और समुदाय के सुदृढ़ बंधन पर बल देता है। इसके अनुसार नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक वाद विवाद और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर अपने समाज का भावी रूप निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में नागरिकता का मुख्य लक्षण नागरिक सहभागिता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में हरना ऑरेंज, बेंजामिन बार्बर और माइकल वाल्जर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि नागरिक किस समुदाय का सदस्य है उसके साथ वह अपना तादम्य स्थापित करे और उसके राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग ले, तभी वह सामान्य हित की सिद्धि में योग दे सकता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने आप को समुदाय की संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं और भावनाओं के साथ एकाकार करके ही सच्चे अर्थों में उसका नागरिक बनता है। इस सिद्धांत नागरिकों के जीवन में ऐसी एकता स्थापित करना चाहता है जैसी किसी परिवार, धार्मिक समुदाय या मजदूर संघ के निष्ठावान सदस्यों में पाई जाती है। वे एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से बंधे हुए एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं। इस सिद्धांत के आलोचक यह तर्क देते हैं कि नागरिकता का यह प्रतिरूप केवल ऐसे छोटे आकार एक सार समुदाय के लिए उपयुक्त है जैसा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस या 15वीं शताब्दी के फ्लोरेंस में प्रचलित था। जया जॉक रूसो ने अपनी विख्यात कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ऐसे समुदाय को लक्ष्य करके ही सामान्य इच्छा के और विभाव की कल्पना की थी। आज के जटिल समाज में वाद विवाद के माध्यम से सहमति के मोटे मोटे मुद्दे तो ढूंढे जा सकते हैं, परंतु ऐसी सामान्य इच्छा का पता लगाना मुश्किल है जो संपूर्ण समुदाय की चेतना को समान रूप से मान्य हो। नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत के अनुसार नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है, अर्थात वर्ग संघर्ष में कोई वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही नागरिकता की बुनियाद है। इस सिद्धांत का मुख्य व्याख्याकार एंथनी गिडेंस है। गिडेंस ने अपनी दो कृतियों ए कंटेम्प्री क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवादी की समकालीन मीमांसा और प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी के अंतर्गत अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए मार्शल के विचारों का खंडन किया है। उसने विशेष रूप से तीन मुद्दे उठाए हैं। पहला, मार्शल नागरिकता के विकास को ऐसी प्रक्रिया मानता है जो आधुनिक विश्व में अपने आंतरिक तर्क की प्रेरणा से भिन्न भिन्न रूपों में ढलती जाती है। इसके विपरीत गिडेंस का विचार है कि नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार मुख्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। दूसरा, मार्शल के अनुसार नागरिकता का विकास सरल रेखा की तरह निरंतर एक ही दिशा में हुआ है। गिडेंस के अनुसार नागरिकता का विकास इस ढंग से नहीं हुआ बल्कि उसमें उतार चढ़ाव आते रहे। और मार्शल के अनुसार नागरिकता से जुड़े हुए अधिकारों की तीन श्रेणियों की पहचान की है, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। अब उसने नागरिक अधिकारों को एक सार श्रेणी माना है। इसके विपरीत गिडेंस ने दो तरह के नागरिक अधिकारों में अंतर किया है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। ऐसे नागरिक अधिकार जिन्हें मुख्यतः उदयमान बुजुर्वार वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग ने सामंती विशेषाधिकारों के विरुद्ध संघर्ष करके प्राप्त किया, इन अधिकारों में औद्योगिक पूंजीवाद और आधुनिक प्रतिनिधि राज्य को सुदृढ़ करने में सहायता दी। इन्होंने अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित ठहराया। राज्य और गैर सरकारी क्षेत्रों के बीच विभाजक रेखा खींच दी और नागरिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया। ख, आर्थिक नागरिक अधिकार। ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए कामगार वर्ग और मजदूर संघ आंदोलनकारियों ने बुजुर्वा शक्ति तंत्र के विरुद्ध संघर्ष किया। इनमें मजदूर संघ के निर्माण, उसकी गतिविधियों के विस्तार, सौदेबाजी और हड़ताल का अधिकार सम्मिलित है, जिन्होंने पूंजीवादी प्रणाली के प्रभुत्व को चुनौती दी। गिडेंस के विचार से नागरिकता और आधुनिक लोकतंत्र का विकास 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ जब राज्य की प्रभुसत्ता और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार हो गया। इस तरह राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र करने, उनकी गतिविधियों का हिसाब रखने और उन पर निगरानी रखने में समर्थ हो गया। अतः उसे अपने नागरिकों पर नियंत्रण रखने के लिए केवल बल प्रयोग का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासक और शासित एक दूसरे पर आश्रित हो गए और ऐसे अवसर पैदा हो गए कि शासित स्वयं शासकों पर अपना प्रभाव डाल सके। गिडेंस ने अपनी नवीन कृति द नेशन स्टेट एंड वाइल्डनेस के अंतर्गत यह स्वीकार किया कि समकालीन पूंजीवाद 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद से सर्वथा भिन्न है। इसके रूपांतरण में श्रम आंदोलनों ने मुख्य भूमिका निभाई है। आज के अधिकांश पूंजीवादी देशों में कल्याणकारी पूंजीवाद का उदय हो चुका है जो कामगार वर्ग के नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये नागरिक अधिकार औद्योगिक पूंजीवाद व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस तरह गिडेंस मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं से हटकर इस विचार के निकट आ गया है कि उदार लोकतंत्र के ढांचे के भीतर नागरिकता के अधिकारों को सार्थक किया जा सकता है। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। इसे किसी एक कारण के साथ नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसकी उपयुक्त व्याख्या के लिए इसके भिन्न भिन्न कारकों की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। इस सिद्धांत का सर्वोत्तम निरूपण बी एस टर्नर ने चर्चित कृति सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डिबेट ओवर में किया। डेविड हेल्ड ने पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट के अंतर्गत लिखा है, प्राचीन काल से आज तक नागरिकता का यह अर्थ लगाया गया कि नागरिक को अपने समुदाय के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होंगे और समुदाय के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होंगे। ये अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरे शब्दों में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति के अधिकार और दूसरे के कर्तव्य बन जाते हैं, उसके कर्तव्य दूसरों के अधिकार बन जाते हैं। नागरिकता का सार तत्व समुदाय के जीवन में व्यक्ति की सहभागिता है। इसे केवल वर्ग संघर्ष की देन मानना भ्रामक होगा। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो बहुत सारे लोगों को लिंग, जाति, धर्म, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, आयु इत्यादि के आधार पर नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। आज के युग में ऐसे भेदभाव के विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए गए हैं। अतः समकालीन विश्व में नागरिकता की समस्या को नारीवाद, अश्वेत आंदोलन, परिस्थिति विज्ञान और बाल अधिकारों इत्यादि से जुड़े हुए आंदोलनों के संदर्भ में रखकर देखना चाहिए। तरह तरह के इन आंदोलनों को वर्ग संघर्ष की सामान्य श्रेणी में रखना युक्तिसंगत नहीं होगा। संक्षेप में, नागरिकता का बहुलवाद सिद्धांत उन सब प्रवृत्तियों और आंदोलनों की और हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने की मांग उठाते हैं। चूंकि सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ ये आंदोलन निरंतर कई दिशाओं में फैल रहे हैं, इसलिए नागरिकता का विश्लेषण निरंतर अनुसंधान का विषय है, जो किसी एक बने बनाए ढांचे में ढालकर नहीं रखा जा सकता।